వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధి. అవీక్షిత్ కే పుత్ర కి మరుత్ కి కథ పూరి హుయి. मरुत के 18 पुत्रों में नरिश्यंत सबसे बड़े थे और सबसे श्रेष्ठ भी थे. 85,000 वर्षों तक शासन किया और अपने बड़े पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं वन में चले गए. ये बात कल हो गई थी. तदनंतर वो स्वर्ग में भी चले गए. ये भी यहां तक हो गया. नरिश्यंत का चरित्र बड़ा विचित्र है. नरिश्यंत मन में यही सोचते थे वो स्वर्ग चले गए, ये बात ठीक है, पर जिस समय वे राजगद्दी पर बैठे हुए थे उस समय उन्होंने अपने पूर्वजों के चरित्र पर पूरा विचार किया. बड़े बड़े यज्ञ किए और निष्काम कर्म का अनुष्ठान किया. धनदान आदि से सबको प्रसन्न किया. नरिश्यंत के समान कोई यज्ञ करने वाला हुआ नहीं. ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह के लिए बहुत बड़ी संपत्ति देकर और 100 गुना अन्न दिया, गौ वस्त्र और आभूषण धान्य भंडार खूब ब्राह्मणों को दिए. अब राजा ने दूसरा यज्ञ करना चाहा तो ब्राह्मण मिले नहीं. ब्राह्मणों ने कहा कि देखो अब हमको तो कोई जरूरत है नहीं, अब हम तो हमारे घर में ही बैठ करके अपना ही यज्ञ करेंगे, इसलिए आप किसी और ब्राह्मण को चुन लीजिए. आपने हमको पहले इतना धन दे दिया है, क्योंकि ब्राह्मण का स्वभाव ज्यादा धन संग्रह करने का होता नहीं है. यदि आप यज्ञ कराओगे तो धन तो आप दोगे, दान देना आपका कर्तव्य है और दक्षिणा के बिना यज्ञ अपूर्ण रहता है, लेकिन हम उसको लेकर करेंगे क्या? हमें अब धन की आवश्यकता नहीं है. ऐसे ब्राह्मणों ने उत्तर दे दिया. तब महाराज ने विचार किया, नरिश्यंत ने, कि अपने तो बहिर्वेदी में दान का आयोजन कर देंगे, माने ब्राह्मण यज्ञ करेंगे, वेदी के बाहर हम धन रख देंगे, जो भी दक्षिणा देनी है अब आवे जो ले जाए. अब ब्राह्मणों ने क्यों ने यज्ञ तो करा दिया, पर धन से भरा रहने के कारण से किसी ने वो दान लिया नहीं. तब उनके मन में आया कि ओहो, आज पृथ्वी पर कोई गरीब ब्राह्मण रहा ही नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है. फिर कुछ ब्राह्मणों को ऋत्विक बनाया, बड़ा यज्ञ किया और सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लग गए. राजा के यज्ञ मंडप में कोई सदस्य नहीं बना. कुछ ब्राह्मण यजमान बने यज्ञ के पुरोहित भी बने, परंतु वे किसी प्रकार से दान नहीं लेने लगे। पूर्व दिशा में 18 करोड़, पश्चिम दिशा में 7 करोड़, दक्षिण में 14 करोड़ और उत्तर में 15 करोड़ यज्ञ एक साथ प्रारंभ हुए। इस प्रकार मरुत्तनंदन नरिश्यंत बड़े धर्मात्मा हुए थे, अपने बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे और अंत में वे तपस्या करके स्वर्ग में गए। देखो मुक्ति हुई ये बात नहीं आई, कितने करोड़ों यज्ञ किया है, 54 करोड़ यज्ञ किया है पर स्वर्ग में ही गए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं भगवत प्राप्ति के ऊपर जोर देते हैं। नरिश्यंत के दम नाम का पुत्र था, वो दुष्टों का दमन करने वाला था, इंद्र के समान बल था। नरिश्यंत की पत्नी का नाम था इंद्रसेना, वो दम की मां थी। यह दम अपने माता के गर्भ में 9 वर्षों तक रहा। बड़ा दमनशील था, इसलिए पुरोहितों ने इसका नाम दम रखा। 9 वर्ष के बाद जब इसका जन्म हुआ, उसके बाद इसकी शिक्षा दीक्षा हुई, इसने दैत्यराज वृषपर्वा से धनुर्वेद की शिक्षा ली, दैत्यराज दुंदुभी से अस्त्र प्राप्त किए। देखो शिक्षा का विधान तो ब्राह्मण से होता है, पर ये राजा लोग ये बताना चाहते हैं कि जिसके पास भी अच्छे गुण हो, जिसके पास जो विशेषता हो, उन गुणों को लेने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। शिक्षा लेने में, विद्या में कभी अपवित्रता नहीं आती है। तो दैत्यराज दुंदुभी से भी उन्होंने अस्त्र प्राप्त किए और राजर्षि अष्टसेन से योग विद्या प्राप्त की। वो बड़ा ही सुंदर स्वरूपवान महात्मा, अस्त्र विद्या का ज्ञाता और बड़ा बलवान था। एक बार सुमना एक बार दशारण देश का राजा था चारु वर्मा, उसने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया। उस पुत्री का नाम सुमना था। उस स्वयंवर में देश देशांतर से बहुत राजकुमार आए, राजा भी आए। उन सब में श्रेष्ठ दम को देखकर उसने दम के गले में जयमाला पहना दी, पति चुन लिया। वहां उस सुमना को देख करके कई राजा मोहित हो गए थे। उन्होंने विचार किया कि ये सुमना तो इस दम को चाहती है, अपन किसी भी प्रकार से इस सुंदरी कन्या को बलपूर्वक यहां से उठाकर ले जाए और वहां हम अलग स्वयंवर करेंगे और कहेंगे कि नहीं, हम जो स्वयंवर कर रहे हैं इसमें जिसको ये चुनेगी वो इसका पति होगा। तो वहां 3 राजकुमार थे, एक तो मध्य देश का राजकुमार महानंद, ऐसे ही विदर्भ देश का राजा संक्रंदन, संक्रंदन का बेटा था वपुष्मान, और इनके साथ एक और देश का राजा था जो इनका परम मित्र था, ये तीनों राजकुमारों ने सुंदरी कन्या को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसको उन्होंने हर लिया। इधर राजा दम के पक्ष में जो राजा लोग थे उन सब ने कोलाहल किया, कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ मध्यस्थ थे, ऐसे करके सब आपस में तरह तरह की चर्चा करने लगे। उस समय दम ने उन सब के बीच में खड़े होकर कहा, राजाओं, स्वयंवर की धार्मिक कार्यों में गणना है कि नहीं है? स्वयंवर धर्म है या अधर्म है? इस कन्या को बलपूर्वक इतने राजाओं के सामने उठाकर ले जाना उचित है कि अनुचित है? यदि स्वयंवर करना ही अधर्म है तब तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये भले ही किसी की भी पत्नी हो जाए, किंतु यदि ये धर्म है तो इसने मेरे गले में जयमाला पहनाई है तो ये मेरी पत्नी हो चुकी है। इस दिशा में इन प्राणों को धारण करके क्या होगा जो शत्रु उसके सामने से उसकी पत्नी को ले जाए और वो लोग देखते रहे। लड़की के पिता, सुमना के पिता दशारण देश के राजा चारु वर्मा ने कहा, राजाओं, दम ने जो ये बात की है आप स्पष्ट रूप से बताओ कि ये धर्म है या अधर्म है? आपको वो काम करना है जिससे धर्म का लोप न हो। राजाओं ने कहा कि ये किसी प्रकार से अधर्म नहीं है, परस्पर में दोनों में जो अनुराग हो गया उसमें एक दूसरे को स्वीकार करते हो वो गांधर्व विवाह का विधान है, परंतु ये गांधर्व विवाह सब जगह नहीं चलता है, क्षत्रियों के लिए है, वैश्य शूद्र और ब्राह्मणों के लिए ऐसे आपस में एक दूसरे को देख करके विवाह करने की पद्धति नहीं है, प्रेम करके विवाह करने की पद्धति नहीं, क्षत्रियों के लिए है। दम ने उसको स्वीकार किया, उसने इसको स्वीकार किया, तो ये गांधर्व विवाह है, इसलिए धर्म की दृष्टि से आपकी पुत्री दम की पत्नी हो चुकी है। जो मोहवश ये विपरीत आचरण किया गया है ये अधर्म है। दम के नेत्र लाल हो गए, उन्होंने धनुष चढ़ाया और सबके सामने उन्होंने वचन देते हुए कहा, यदि मेरी पत्नी मेरे देखते देखते बलवान राजाओं के द्वारा हार ली जाए तो मुझ जैसे उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले ऐसे अधम राजा को धिक्कार है, मेरी इन भुजाओं से मुझे क्या लाभ, मेरा शौर्य, मेरे अस्त्रों का ज्ञान, मेरा धनुर्वेद कोई काम का नहीं रहा। हे राजाओं, मैं महाराज मरुत के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, यदि मैं अपनी पत्नी को प्राप्त न करूं तो मेरे जन्म को धिक्कार है। यूं कहकर दम ने महानंद आदि समस्त शत्रुओं को ललकार करते हुए कहा, ए भूपालों, ये बाला अत्यंत सुंदरी और कुलीन है, यह जिसकी पत्नी नहीं हुई उसका नाम लेना व्यर्थ है, यह विचार कर तुम लोग युद्ध में इस प्रकार यत्न करो कि मुझे तुम युद्ध में परास्त करो और फिर इसे अपनी पत्नी बनाने का विचार करो। हरण करने वाले उन राजकुमारों ने राजकुमार दम की ये बात सुनी। इधर दम ने बाणों की वर्षा प्रारंभ की, जैसे अंधकार वृक्ष को ढक देता है इसी प्रकार दम ने उन राजाओं को बाणों से एकदम आच्छादित कर दिया। वे भी बड़े वीर थे, बाण शक्ति रिष्टि मुदगर सबसे वर्षा करने लगे, किंतु दम ने उनके चलाए हुए सारे हथियारों को खेली खेली में समाप्त कर दिया। तब महापराक्रमी महानंद वहां आ पहुंचा और वो आकर उसके साथ युद्ध करने लगा। कालाग्नि का बाण दम ने ऐसा मारा कि उसकी छाती विदीर्ण हो गई। उसने दम के ऊपर चमचमाती हुई तलवार फेंकी। दम ने उसके शक्ति के प्रहार से उस तलवार को काट दिया। अब महानंद का मस्तक था वो वेतस पत्र नाम के बाण से उसने समाप्त कर दिया। जब महानंद जैसे शक्तिशाली राजा को दम ने मार दिया तब सब राजा पीठ दिखाकर भाग गए। एक कुंडिनपुर का राजा वपुष्मान वहां रहा, दम के साथ युद्ध किया और फिर अंत में दम ने उसको भी काट दिया, उसकी तलवार को काट दिया, सारथी को मार दिया, ध्वजा को काट दिया, गदा उठाई और उसकी गदा को भी काट दिया। जो भी वो शस्त्र लेता वो सब को वो गिरा देता। अंत में उसको खुद को बींद कर पृथ्वी पर गिरा दिया और वो आकुल व्याकुल हो गया, थर थर कांपने लगा। अब उसने युद्ध का विचार छोड़ दिया। उसको इस अवस्था में देख दम ने उसको जीवित छोड़ दिया और फिर प्रसन्न चित्त हो सुमना को साथ लेकर भी वहां से चला। राजा चारु वर्मा बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर उसने विधि पूर्वक विवाह कर दिया। कुछ काल ठहरने के पश्चात दम अपनी स्त्री के साथ अपने घर को चला गया। दशार्ण राज ने भी बहुत से हाथी घोड़े इत्यादि वर वधु को दिए। दम सुमना को पत्नी के रूप में पाकर बड़े आनंद के साथ रहते थे, प्रजा का पालन करते थे, माता पिता के बड़े कृपा पात्र थे। उनके पिता नरिश्यंत ने उस समय बहुत बड़ा उत्सव मनाया और फिर नरिश्यंत तो चले ही गए थे। राजा नरिश्यंत बहुत बूढ़े हो गए थे। तब वे वन में गए और उनकी पत्नी भी उनके साथ में चली गई थी। एक दिन दक्षिण देश का दुराचारी राजकुमार वपुष्मान, जो संक्रंदन का पुत्र था, थोड़ी सी सेना साथ में ले वन में शिकार खेलने के लिए गया। उसने नरिशंत और उसकी पत्नी इंद्रसेना को तपस्या से अत्यंत दुर्बल देख करके पूछा, आप कौन हैं? आप इस वानप्रस्थ आश्रम में कौन हैं? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं अथवा आप वैश्य हैं? बताइए। राजा नरिश्यंत तो मौन व्रत धारण कर लिए थे इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन उनकी पत्नी इंद्रसेना थी, उसने सब बातें सच सच बता दी कि हम दम के माता पिता हैं। वो दम जिसने सुमना को स्वयंवर में लिया, हमको परास्त किया। परिचय पाकर के विचार क्या है, आज तो इस दम का बदला लेना ही चाहिए। इसलिए और कुछ न करके उसने सबसे पहले नरिश्यंत की जटा पकड़ ली और दम की मां इंद्रसेना आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से जोर जोर से चिल्लाने लगी। वपुष्मान ने अपने म्यान से तलवार निकाल करके धमकाते हुए कहा, जिसने युद्ध में मुझे परास्त किया है और मेरी सुमना को हर लिया है, उस दम के पिता को मार करके मैं आज उसका बदला लूंगा। अब मैं आकर देखता हूं कैसे रक्षा करे। इंद्रसेना ने कहा, हे वपुष्मान, जो बात बीत जाती है उसको सदा के लिए हृदय में नहीं रखना चाहिए। स्वयंवर में तो उसने उसके गले में जयमाला पहनाई है, इसके लिए हमारे क्या दोष है? हम उसके पिता माता सब छोड़ छाड़ करके जब वन में आकर तपस्या करने लगे हैं, ऐसी स्थिति में इन तपस्वियों को मारने का पाप मत करो। पर वो दुराचारी कहां मानने वाला, उसने तो तलवार से नरिशंत का मस्तक काट डाला। वहां ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए, सब ने उसको धिक्कारा। वपुष्मान अपने बल के घमंड में चूर था और वो ऋषि मुनियों की कोई परवाह न करके नगर की ओर लट चला गया। उसके चले जाने के बाद इंद्र सेना ने एक शूद्र तपस्वी को अपने पुत्र के पास भेजा और कहा कि बेटा तुम शीघ्र आकर, तपस्वी को अपने पुत्र के पास भेजा और कहा कि तुम शीघ्र जाओ और मेरे बेटे को सब हालचाल सुनाओ। मेरा संदेश इस प्रकार से कहना, पुत्र महाराज के इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण हिंसा देखकर मैं बहुत दुखी हो गई हूं। राजा होने का अधिकार उसी को है जो चारों वर्णों और चारों आश्रमों की रक्षा करता है। आज तुम राजा हो, मैं मां बनकर ये बात नहीं कहती हूं, मैं एक तपस्विनी होकर तुम्हारे पास ये संदेश देती हूं। तुम तपस्वियों की रक्षा नहीं करोगे, क्या तुम्हारा राज्य अखंड रह जाएगा? ये तुम्हारे लिए उचित है? तुम्हारे महाराज नरिशंत के विषय में ये बात तो बड़ी प्रसिद्ध है कि वे बिना किसी अपराध के किसी को दंड नहीं देते थे, और आज बिना किसी अपराध के उनके केश पकड़कर वपुष्मान ने उनकी हत्या की, और ऐसी स्थिति में तुम जहां भी हो वहां पर तुम राजा बने हुए रहते हो, क्या इससे तुम्हारा धर्म लुप्त नहीं होगा? इतनी बात कह देना, इससे आगे कुछ मत कहना, क्योंकि मैं तपस्विनी हूं और कहना तुम्हारे मंत्री वीर तथा शास्त्रों की ज्ञाताएं उनके साथ ठीक ढंग से विचार करना, जो उचित हो वो करना। अपने पिता शक्ति को राक्षस के हाथ से मारा गया सुनकर महाराज पराशर ने समस्त राक्षस कुल को अग्नि कुंड में होम करके भस्म कर दिया था। मैं तो ऐसा मानती हूं कि तुम्हारे पिता नहीं तुम मर गए, उनके ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर वो तलवार गिरी है, वो तुम्हारे पिता का सिर नहीं वो तुम्हारा सिर कटा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा का सिर कटा है, तुम्हारे धर्म का सिर कटा है। अब तुम्हें भृत्य कुटुंब और बंधु बांधवों सहित वपुष्मान के प्रति जो बर्ताव करना हो वो करो, हमारा काम तुम्हें संदेश देने का है। शूद्र तपस्वी वहां से विदा हो गया और स्वयं पति के शरीर को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। इधर इंद्र सेना की आज्ञा से वो शूद्र तापस वहां आकर दम से उनके पिता के मारे जाने का सब समाचार कहा। क्रोध से वो दम जल उठा, जैसे घी डालने पर आग एक साथ प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार दम क्रोधाग्नि से जलते हुए हाथ से हाथ मलने लगे और कहने लगे, ओह मुझ पुत्र के जीते जी उस नृशंस वपुष्मान ने मेरे पिता को अनाथ के भांति मार डाला, ये मेरे पूर्वजों का अपमान है। यदि मैं बैठकर शोक मनाऊं या क्षमा कर दूं तो ये मेरी बहुत बड़ी अधमता है, नीचापन है, दुष्टों का दमन और सत्पुरुषों का पालन ये मेरा कर्तव्य है। मेरे पिता को मारा गया देखकर भी यदि शत्रु जीवित है तो अब हाथ आथ कहकर बहुत अधिक विलाप करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इस समय जो करना आवश्यक है वही मुझे करना चाहिए। उस कायर पापी दुष्ट दक्षिण देश निवासी शत्रु को युद्ध में मारकर संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगूंगा। यदि उसे न मार सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। देवराज इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर स्वयं इस युद्ध में पधारे, भयंकर दंड देने के लिए साक्षात यमराज भी मुझ पर कुपित होकर आ जाए, कुबेर वरुण और सूर्य भी वपुष्मान की रक्षा का यत्न करें, तो भी मैं अपने तीखे बाणों से उसका वध कर डालूंगा। उसका परिणाम मेरी मृत्यु ही तो होगी, हो जाएगी तो हो जाएगी। जो नियतात्मा निर्दोष वनवासी अपने आप गिरे हुए फल का आहार करने वाले तथा सब प्राणियों के मित्र ऐसे मेरे पिता को जिसने मुझ जैसे शक्तिशाली पुत्र के रहते हुए हिंसा की है, उसके मांस और रक्त से आज गीद तृप्त होंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करके नरिश्यंत कुमार दम ने मंत्रियों तथा पुरोहितों को बुला करके कहा, शूद्र तपस्वी ने जो समाचार कहा है उसे आप लोगों ने सुन लिया? इसने भरी सभा में यह समाचार कहा है। पिताजी तो स्वर्ग धाम में पहुंचे, अब मेरे लिए बताओ क्या उचित है? आज मैं वही करूंगा जिसके लिए मेरी माता ने आज्ञा दी है। हाथी घोड़े रथ पैदल सभी सेना तैयार करो। पिता के बैर का बदला लिए बिना, पिता के हत्यारे का प्राण लिए बिना, माता की आज्ञा का पालन किए बिना अब मुझे जीवित रहने में कोई उत्साह नहीं है। राजा की बात सुनकर खिन्न हुए मंत्रियों ने सेवकों वाहनों सहित सेना को कूच करने के लिए तैयार किया। त्रिकाल वेत्ता पुरोहित से आशीर्वाद ले सब लोग तलवार शक्ति और दृष्टि आदि आयुध लिए नगर से बाहर निकले। महाराज दम नागराज के भांति फुंफकारते हुए वपुष्मान के देश की ओर चले। उन्होंने वपुष्मान के सीमा रक्षकों सामंतों का वध करते हुए बड़े वेग से दक्षिण दिशा में चढ़ाई की। इधर संक्रंदन कुमार वपुष्मान को यह पता लगा कि दल बल सहित ये दम आ रहा है, उसके मन में तनिक भी भय और कंपन नहीं हुआ। उसने भी अपनी सेना तैयार होने का आदेश दे दिया। नगर के बाहर निकलकर दम के पास दूत भेजा। दूतों ने वहां आकर कहा, हे क्षत्रियाधम दम, तो शीघ्रतापूर्वक मेरे समीप आ जा। नरिश्यंत अपनी स्त्री के साथ तेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरी भुजाओं से छूटे हुए बाण जो शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए गए हैं वो आज तेरे शरीर में घुसकर युद्ध में तेरा रक्तपान करेंगे और तेरे पिता माता ये सब देख करके आज तृप्त हो जाएंगे। दूत की बात सुनकर दम ने पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का स्मरण किया और सर्प के भांति फुफकारते हुए वेग से पैर बढ़ाया। कुंडिनपुर के पास पहुंचकर दम ने वपुष्मान को युद्ध के लिए ललकारा। फिर तो दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। रथी रथ सवार के साथ, हाथी सवार के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ खूब भिड़ गए। देवता सिद्ध गंधर्व आदि सब देखते रहे। दोनों दलों में बड़ा भारी युद्ध छिड़ा। जब दम क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगा तो सारी पृथ्वी कांप गई। कोई हाथी सवार रथ घुड़सवार ऐसा नहीं मिला जो उसका बाण सह सकता हो। तदंतर वपुष्मान का सेनापति दम के साथ युद्ध करने आया, गहरी चोट पहुंची उसकी छाती में, वहीं पूरा हुआ। सारी सेना में भगदड़ मच गया। दम ने कहा, ए दुष्ट, तू मेरे तपस्वी पिता का जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था अकारण वध किया है, अब तेरी सेना को तू कहां भगा रहा है? यदि क्षत्रिय है तो लौटा। तब वपुष्मान छोटे भाई के साथ लौट आया। साथ में उसके पुत्र भाई बंधु और भी दूसरे थे, सब रथ में सवार होकर दम के साथ युद्ध करने लगे। दम अपने पिता के वध से कुपित तो थे ही, वपुष्मान के चलाए हुए सारे बाणों को काट डाला और एक एक बाण मारकर उनके सात पुत्रों भाइयों संबंधियों तथा मित्रों को यमराज के घर भेज दिया। पुत्रों और भाइयों के मर जाने के बाद वपुष्मान को बड़ा क्रोध हुआ। वो सर्पों के विषैले बाण लेकर दम के साथ युद्ध करने लगा। दम ने सब बाण काट डाले। दोनों के एक दूसरे के साथ खूब युद्ध हुआ और अंत में धरती पर पटक करके गला दबा करके भुजा उठा कर कहा, हे देवताओं सुनो, मैं इस नीच क्षत्रिय वपुष्मान की छाती चीर डालता हूं। संसार में कोई इसकी रक्षा करने वाला है तो आ जाओ, मैं इसकी तरह वनवास में गए हुए तपस्वियों को छिप करके मारने वाला नहीं, सबके सामने मारता हूं। इस समय दिन है, इस समय सब लोग चौकन्ने भी हैं और सावधान भी है। आप सबको मैं चुनौती देते हुए कि कोई भी इसका पक्ष लेने वाला हो आ जाओ, मैं इसकी छाती को चीरता हूं। गला दबाया हुआ चारों तरफ देखने लगा, कहीं से कोई नहीं आया और अंत में तलवार से उसकी छाती को चीर दिया। अपने पिता के बैर का बदला लिया, पुनः नगर में लौट आया। सूर्यवंश के राजा ऐसे ही पराक्रमी थे, इनके अतिरिक्त तो और भी बड़े शूरवीर विद्वान यज्ञकर्ता धर्मज्ञ थे, वेद वेदांत के। शिका पाप समुदाय नष्ट हो जाता है। वो पक्षी जैमिनी जी से बात कर रहे थे, शुरू शुरू में जहां से प्रारंभ हुआ। जैमिनी जी महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने ये सब कथा सुनाकर क्रौष्टभ जी को विदा कर दिया। इसके बाद मध्यान्ह काल की क्रिया प्रारंभ हुई। हमने जो सुना था वो सब आपको कह सुनाया जैमिनी जी। ये अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंडेय मुनि को सुनाया था, वही हमने आपसे कहा है। ये पुराण पुण्यमय पवित्र आयुवर्धक संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। आपने प्रारंभ में जो प्रश्न किए थे उनके उत्तर में हमने पिता पुत्र संवाद, ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि, मनु मनु पुत्र राजाओं के सब चरित्र हमने आपको इसमें बता दिए हैं। जो मनुष्य इन प्रसंगों का श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन होता है। ब्रह्मा जी ने 18 पुराण कहे हैं, उनमें इस विख्यात मार्कंडेय पुराण को 7वां पुराण समझना चाहिए। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां श्रीमद् भागवत पुराण, 6ठा नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्यत पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां नृसिंह पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण माना गया है। ये इतनी संख्या इसलिए की है कि जो व्यक्ति इन 18 पुराणों का नाम लेता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय पुराण 4 प्रश्नों से युक्त है। इसके श्रवण करने से 100 करोड़ कल्पों के किए हुए पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवण से उसी प्रकार नष्ट होते हैं जैसे हवा का झोंका लगने से रुई उड़ जाती है। इसके श्रवण से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा ये पुराण है। मार्कंडेय पुराण की समाप्ति पर उत्सव करना चाहिए। और भी कई बातें इसमें बताई। जैमिनी बोले, हे पक्षियों, महाभारत में मेरे जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका उसका निवारण आप लोगों ने ये आज ये चर्चा करके मित्र भाव से किया, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। आप लोग दीर्घायु रहो, निरोग रहो और उत्तम वृत्ति में रहो। सांख्य योग में आपकी बुद्धि अविचल भाव से स्थित रहे, पिता के शाप जनित दोष से जो आपको दुख होता है वो दूर हो जाए। इस प्रकार जैमिनी मुनि उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके आश्रम में चले गए और पक्षियों के द्वारा दिए हुए परम उपदेश का सदा चिंतन करने लगे। यह आज मार्कंडेय पुराण समाप्त हुआ। अब पेड़ पुराण चलाते हैं। ये सेठ जी का पेड़ पुराण।